ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। सरकार ने उत्तर प्रदेश में जेवर हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस इकाई को प्रति माह 20,000 वेफर्स के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि 37 अरब रूपये के निवेश वाली इस इकाई की डिजाइन आउटपुट क्षमता 3,60,00,000 यूनिट प्रति माह है।
जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। दिस ज्वाइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सेमीकंडक्टर इकाई की स्वीकृति देश को प्रौद्योगिकी का शक्ति भंडार बनाने की दिशा में एक और कदम है। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में 16 महिला माओवादी सहित 31 माओवादी मारे गए हैं। बीजापुर में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने यह जानकारी दी। श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं के कारण आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों की सफलता दर्शाती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा है कि भारत ने विश्व स्तर पर सबसे तेज 5G सेवा शुरू की है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री पेम्मासानी ने कहा कि 2 वर्षों में देश भर में 4,70,000 से अधिक बेस ट्रांसीवर स्टेशन BTS स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5G क्रांति आई है। भारत की एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम और अन्य भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रही है। भारत 1267 प्रतिबंध समिति में अपना मामला पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक तौर पर द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध कराना और इस संगठन को पाकिस्तान द्वारा मिल रहे समर्थन को दर्शाना है। ये कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए उठाया गया है, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की हत्या की गई थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय टीम संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय और आतंकवाद निरोधक समिति कार्यकारी निदेशालय अधिकारियों से भी मिलेगी। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने एक विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उत्तरी और दक्षिणी गाजा में इसराइली हवाई हमलों में करीब 70 लोग मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि सशस्त्र समूह हमास के पराजित होने तक वे फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमले नहीं रोकेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और अस्पतालों के अनुसार उत्तरी गाजा में जबालिया के आसपास हुए हमलों में ही कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। रूस ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने होने वाली शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ये वार्ता आज से तुर्की के इस्तांबुल में शुरू होनी है। रूस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर पेदेंसकी रूसी शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिष्टमंडल में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गैलुजिन, जनरल स्टाफ डायरेक्टर इगोर कोस्तियुकोव और उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिंग शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।